وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. और इसी तरह हम फिर फिर के लाते हैं आयतों को, अल्लाह ताला कितनी तरह समझाते हैं ना, कितनी तरह, फिर लियकूलू दरस्ता, ताकि वो कहें तू पढ़ के आया। ये बताया गया है मुशरिकीन का जो काम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलाम जब सुनते थे तो उसके बाद कहते थे तू पढ़ के आया है कहीं से, कहीं से सीख के आया है, कोई वो जो अजमी जो यहूदियों के कोई गुलाम जो अहले किताब के कोई लोग थे उनसे तू पढ़ के आया, उनकी क्योंकि उनको भी समझ आती थी कि ये तो बहुत ही डिफरेंट बातें हैं। आप देखें आज भी आप कुरान को खोलें और हदीस को खोलें, अल्फाज में इनमें बहुत फर्क है, स्टाइल में फर्क है। और जो अरबी समझने वाले लोग थे वो तो आजिज थे, कहते थे ये वाकई जब कुरान चैलेंज करता था उनको खुल्लम खुल्ला एक आयत बना के ला दो, एक सूरत बना के ला, वो उनमें अगर इतनी ताकत होती वो बना के ना ले आते, उनको समझ आती थी कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई कलाम है, ये इंसानी मतलब ये हमारी बस की चीज नहीं है। तो अब वो उनको ये तो पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल से हमारे अंदर रहते थे, इन्होंने आज तक तो ऐसी बातें नहीं की, इसका मतलब कहीं से जरूर सीख के आए होंगे। अब ये तो मानना नहीं था कि अल्लाह का कलाम है, तो जाहिर है कुछ यही कहना पड़ रहा था, हालांकि वो खुद समझते थे कि अगर हम अरबी होके इतने जुबानदान होके हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम इस जैसा कलाम नहीं ला पा रहे, तो वो अजमी जो लोग हैं वो गुलाम कैसे इनको सिखा सकते हैं। अल्लाह ताला फेर फेर के रहता है ताकि जिन्होंने गुमराह होना है वो इस तरह गुमराह हो जाए, वाली नुबई ना हो लिकौमी आलमून, और जो और हम बयान करें इसको उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, और कुछ लोग होंगे जो इल्म वाले होंगे वो इससे जब अल्लाह ताला फिर फिर के तरह तरह से समझाते हैं तो कुछ लोग इससे फायदा भी उठाएंगे, कोई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जी ये पढ़ा हुआ है कहीं से पढ़ के आया वह, कहीं से इसने सीखा है, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो इल्म हासिल करना चाहेंगे तो इससे इल्म पा लेंगे। आप क्या करें या नबी इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, आप पैरवी कीजिए जो वही किया गया आपकी तरफ आपके रब की तरफ से, यानी इस कुरान पाक की, इनकी बातों को ना सुने। ला इलाह इल्ला हु, नहीं कोई इलाह मगर वही, देखिए बार बार आप देखें आयतों के अंदर यही बताया जा रहा है कि तौहीद की तरफ आओ, एक ही तुम्हारा माबूद है, इबादत सिर्फ उसकी होनी चाहिए। वह आरिद अनिल मुशरिकी, इनकी बातों से एराज करें, इनसे मुंह मोड़े, अगर ये बातें करें ये पढ़ के आया ये है, तो इनके ऊपर ना आप गम करें कि ये नहीं सुन रहे ये नहीं समझ रहे, अल्लाह अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ही ना करते। यानी क्या मतलब, अगर अल्लाह ने जबरदस्ती ही किसी को मुसलमान करना होता ना तो अल्लाह कर देता और ये शिरक ही ना करते फिर, लेकिन अल्लाह ताला ने जबरदस्ती नहीं करना, तो आप ना गम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता था ना जब ऐसी बातें करते, तो इसके ऊपर जवाब दिया गया। देखें जबरन तो अल्लाह जिसको चाहे हिदायत के रास्ते पे ला सकता है, लेकिन ये अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह ताला ने कानून क्या बनाया कि उसने आजादी दी है इंसान को, खुद इख्तियार दिया इंसान को, क्योंकि आगे आप सूरह नाम में ही पढ़ेंगे वो लोग कह रहे थे अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरकी ना करते, इसका मतलब अल्लाह ने चाहा ही है तो हम कर रहे हैं, जैसे आज भी कई लोग सारी जिम्मेदारी अल्लाह पर डाल देते हैं, अगर अल्लाह चाहता हम भी नेक हो जाते, यानी अस्तगफिरुल्लाह आप ये कहना चाहते हैं अल्लाह ने ही नहीं चाहा, यानी अपनी बदनीयती को नहीं सामने करना, उसको अल्लाह के ऊपर डाल देना कि उसकी नीयत नहीं थी मुझे सीख करने की, कितना बड़ा बहतान है ये, कितना बड़ा बहतान है। कई लोग को कुरान की तरह बुला कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम आ जाते, यानी अल्लाह ने नहीं चाहा, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो वो कहने लगे अल्लाह चाहता तो हम ना शिर्क करते, अगर अल्लाह को शिर्क इतना ही बुरा लगता था तो फिर हमें रोक देता वो, तो वाकई अल्लाह कुव्वत से चाहे तो रोक दे, लेकिन वो नहीं कुव्वत इस्तेमाल करता क्योंकि उसने ये कानून बना दिया, वरना कुव्वत के साथ तो सीधा करना होता, तो जैसे सूरज को चला रहा है चांद को चला रहा है तो तुम्हें भी एक स्ट्रेट निजाम के अंदर सिराते मुस्तकीम के ऊपर पाबंद कर देता, तो उसने तुम्हें इख्तियार देना था और उसने चेक करना है कि तुम करते क्या, तुम क्या चूज करते हो, इसी का तो इम्तिहान है। कभी आपने नहीं देखा कि एग्जामिनर जो है वो जबरदस्ती स्टूडेंट से कुछ लिखवा दे कि नहीं तुमने सही लिखना है, तुम गलत लिख ही नहीं सकते, वो तो उसको चांस देता है तुम लिखो जो भी लिखना है तुमने, ये भी जिंदगी इम्तिहान है, अल्लाह ने हमें चांस दिया हम जो चाहें अपने आमालनामे में लिखें। वमा जालना का अलैहिम हफीजा, नहीं आपको उन पर निगेबान बनाया, यानी आपको उन पे हिफाजत करने वाला नहीं हमने बनाया कि आप डंडा लेके खड़े हो जाओ और इनको सारों को सीधा करें। वमा अंता अलैहिम भी वकील, और ना ही आप इनके वकील हैं। वकील मतलब जिम्मेदार, आप इनके जिम्मेदार नहीं है कि ये कहाँ जाते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर ये जहन्नुम पे चलने वाले हैं तो जहन्नुम के रास्ते पे चलने वाले, तो आपसे इनकी पूछ की जाएगी कि क्यों ये इस रास्ते पे चले। देखिए एक दाई जो होता है ना, खास तौर पे आप आज भी देखें, हम तो कुछ ऐसा काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको ये हिर्स होती है कि लोग किसी तरह बस बात को समझ लें, लोग बात को सीख लें, लोग सीधे रास्ते पे आ जाएं, ये छोड़ दें गलत कार्यों। तो पैगंबरों के अंदर तो ये फिक्र बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, क्योंकि दाई को ये हो जाता है जैसे अब आप तबलीग करने के लिए निकले, अब आपका कोशिश ही होती है बस इसको मुसलमान करके ही रहूं, इसमें आप सोचते हैं कि मेरी कामयाबी तब है जब ये मुसलमान हो जाए। नहीं, किसने आपको कहा ये आपकी कामयाबी है? आपकी कामयाबी बस यही है कि आपने पहुंचा देना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये आपकी कामयाबी। क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाना वो मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था, आप फेल हो गए क्योंकि आपने इसका मतलब है कि सही बताया ही नहीं। आप पूरी कोशिश के साथ सही बताएं, आगे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपका काम नहीं है कि अब वो क्या करता है। अब हम यहाँ पे रोक लगा के बैठ जाते हैं, नहीं कोई सुनता ही नहीं है, देखो कोई आता ही नहीं है इस तरह को। तो किसने आपको कहा कि आप ये सोचें कि कोई आता नहीं है तो ये अब आपका कोई काम है? नहीं, अल्लाह ताला ने सबको आजादी दे दी, आपका काम सिर्फ ये किया कि आप पहुंचाएं, आप बताएं, कोई रह ना जाए जिस तक पैगाम ना पहुंचाओ, ये बस आपकी जिम्मेदारी ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने उनकी निगरानी करनी, निगरानी करते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ कि करते क्या है ये, मैंने तो इनको कल ये पढ़ाया था, मैं देखती हूँ ना जरा जाके कि क्या कर रहे हैं। नहीं, आप दारोगा नहीं है लोगों के ऊपर इंस्पेक्टर बन के खड़े हो जाए, पुलिस बन के खड़े हो जाए, ना ही आप इनके जिम्मेदार हैं। फिर एक उसलू, एक बात, एक कायदा हमें रूल दे दिया गया सीखने का, और वो क्या, वला तसुब्बुल लदीना यदउना मिन दून अल्लाह, आप ना गाली दें उनको जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा। क्यों आप उनको क्यों ना गाली दें? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, और आपके अखलाक इतने आला थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये बात कभी सोची नहीं जा सकती कि आप किसी को गाली दें, ना कभी उनके बुतों को दी और ना ही कभी उनको दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के आपकी पूरी उम्मत को बताया जा रहा है कि देखें बहुत से जज्बाती भी लोग आएंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत जोशीले होते हैं, जोश में एकदम आ जाती हैं, तो वो बाज दफा कभी कोई गाली दे दी या कुछ कह दिया तो क्या होगा, फयहसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, वो भी अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। उनको जो जहालत है उनको तो पता ही नहीं, आप उनके बुतों को गाली देंगे तो वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो अल्लाह को गाली देंगे तो आप इस चीज का सबब ना बने कि वो अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात करें। हाँ, जहां तक शिर्क को गलत कहना जरूर कहें, इन चीजों को बातिल कहना जरूर कहें, लेकिन गाली उनके बुतों को या उनके माबूदों या जिसको भी कोई पूज रहा है उसको गाली ना दें, उसको ऊपर हंसी ना करें, उसका मजाक ना करें, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है ना, उनको तो इन चीजों के अंदर उनकी इतनी जान अटकी हुई है, उनको इतनी मोहब्बत है उन चीजों से, तो इसलिए हम सबको ये सिखाया गया। अब इसके पीछे एक वाकया भी आता है जो इब्ने जरीर में है, और आप तफसीरों की किताबों में देख लेंगे, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब अबू तालिब मरजुल मौत में थे, तो कुरैश के जो मुशरिक सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और ईजा रसानी में लगे हुए थे और कत्ल की साजिशें करते रहते थे। उनको अब ये फिक्र हो गई कि जब अबू तालिब की वफात हो जाएगी तो एक मुश्किल मसला बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ देंगे, कत्ल का कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ हो जाएगा। लोग कहेंगे ये कैसे लोग हैं, जब चचा जिंदा था तो हाथ नहीं लगाया और जब चचा दुनिया से चला गया तो फिर इतने दलेर हो गए। तो उन्होंने इस चीज को अपने लिए बड़ी एम्बेरेसमेंट और इंसल्ट की बात समझी कि हम मतलब लोग हमें इस तरह कहेंगे कि कैसे बुजदिल थे, तो चचा के होते हुए तो देखो इनकी चली नहीं और अब देखो ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अबू तालिब के पास चलते हैं। तो वो एक वफद उन्होंने मुरतब किया जिसमें अबू सुफियान, अबू जहल, अमर बिन आस और कुरैश के सरदार थे, और अबू तालिब से मुलाकात के लिए गए और उनसे कहा कि आप हमारे बड़े हैं, सरदार हैं, आपको पता है आपका भतीजा हमारे बारे में हमारे माबूदों को सख्त तकलीफें देता है, अजियत पहुंचाता है, हम चाहते हैं कि आप उनको बुला के समझा दें कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहें और हमसे सुलह कर लें, तो हम अपने दीन पर अमल करेंगे, वो जिसको चाहे अपना माबूद बनाए, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ये आपके बरादरी के लोग हैं, ये कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब हुआ कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमें और हमारे माबूदों को छोड़ दें, उनको बुरा भला ना कहें और हम आपको और आपके माबूद को छोड़ देंगे, इस तरह हमारी मुखालफत भी खत्म हो जाएगी। तो आपने फरमाया कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं कि ऐसा कलमा बताऊं कि जिससे तुम सारे अरब के मालिक हो जाओगे, अजम के मालिक हो जाओगे, सब तुम्हारे ताबे हो जाएंगे, तो तुम मानोगे। अबू जहल कहने लगा ऐसा कलमा एक नहीं, हम 10 भी कहने को तैयार हैं, बताएं तो सही वो क्या है। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनते ही वो सब इतने बिगड़ गए। अबू तालिब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे भतीजे इस कलमे के सिवा कोई और बात कहो तो कहो, क्योंकि ये इस कलमे से घबराते हैं। तो आपने फरमाया चचा जान, मैं तो इस कलमे के सिवा कोई दूसरा कलमा नहीं कह सकता, अगर वो आसमान से सूरज को उतार लाए मेरे हाथ में एक हाथ में रख ले तब भी मैं इस कलमे के सिवा कोई और बात नहीं कहूंगा। इस पे ये लोग इतने नाराज हुए, कहने लगे या तो आप हमारे माबूदों को बुरा कहने से बाज आ जाए, वरना हम आपको भी गालियां देंगे और उस जात को भी जिसका रसूल आप अपने आप को बताते हैं। तो ये एक वाकया आता है, मगर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई गाली नहीं दी। मगर हो सकता है, किताबों में लिखा हुआ है कि हो सकता है कि किसी और मुसलमान के मुंह से उनके बुतों के लिए कोई गाली निकली हो जिसके ऊपर ये आयतें उतरी। तो हमें एक रहनुमाई मिल गई रहती दुनिया तक कि हम इनके खुदा जिनको ये कहते हैं उनको गालियां कभी ना दें, उनको ऐसा ना कहें कि जिससे हम इनको प्रोवोक कर दें कि ये भी कुछ अल्लाह ताला के बारे में बदजुबानी करें, क्योंकि जवाब में वो भी करेंगे ना। इसी से उलमा ने ये मसला निकाला है कि कोई काम अगर ऐसा है कि उसके नतीजे में कोई बात दूसरी दूसरा बंदा ऐसी कह देता है जिसमें कोई फसाद होता है या जिससे कोई तौहीन होती है या ऐसी कोई बात होती है, तो हम फिर ऐसी बात ना करें कि हम उसको इंस्टिगेट करें, उसको उभारें कि वो भी जवाब में कहे, क्योंकि फिर गुनाह हमारे पर भी होगा। मसलन ने एक किसी मिसाल देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली ना दे, तो साहबा ने कहा या रसूल अपने माँ बाप को कौन गाली दे सकता है। हाँ वो तो ऐसा सोच ही सकते थे क्योंकि अगर वो आज आके देख लें तो ऐसे भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो अपने माँ बाप को ही गालियां देते हैं, वो तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ऐसा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इंसान खुद तो गाली नहीं देता, लेकिन जब वो किसी दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो वो भी इसके माँ बाप को देता है। तो गाली किसने दिलवाई अपने माँ बाप को, खुद इसी ने दिलवाई ना। तो ये अमल ही बुरा है कि जब आपकी कुछ कहने की वजह से, मिसाल के तौर पे इसीलिए उलमा कहते हैं अगर किसी का नाफरमान बच्चा है और उसको पता है कि मैं इसको काम ये कहूंगा तो इसने नहीं मानना और इसने इसके खिलाफ ही करना और इससे ये गुनाहगार होगा, जाहिर है बाप की बात या माँ की बात नहीं मानेगा, कोई हराम और हलाल की नहीं इसमें बात हो रही, आम कोई बात है। अगर माँ बाप को पता है कि मैं इसको कहूंगा, एक छोटी सी मिसाल है कि मैं उसको कहूंगा कि बेटा पानी लेकर आओ या मुझे ये चीज ला दो, तो उसने नहीं माननी तो वो उसको ना कहे, इसलिए क्योंकि वो उसको डबल गुनाहगार कर रहा है। ठीक है, कोई काम भी उसको अगर करने हो कहना है तो उसको फिर इस तरह से नसीहत के अंदाज में कहे कि फलां काम अगर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो, या मुझे फलां चीज की जरूरत है, या इस तरह कह दिया जाए कि अगर उसने करनी होगी तो कर लेगा, लेकिन अगर उसको हुक्म दे के कहेगा तो फिर देखे ना कि माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह उसके ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि जब आप वाजो नसीहत भी किसी को करें तो अगर आप ये देख रहे हैं ना कि दूसरा बंदा बिगड़ने वाला है और गलत अंदाज इख्तियार कर रहा है, तो फिर आप बस वहीं पे रुक जाए। बस लोग जैसे आप किसी को अगर आप पूछें आपको पता है कि ये इसके बारे में आपने खबर खबरें सुनी हुई कि ये इसकी सबकी कुछ बातें करता है। बाहर जाके उसको कहें आप बताएं आप कुरान पे ईमान रखते हैं, अब क्या कहने की उसको जरूरत है जब वो पता है कि ये कुछ गलत बातें आपने इसके बारे में सुनी हुई है। अब वो आगे से कहेगा नहीं मैं नहीं, मैं इसका इनकार करता हूं। तो अब आपने उसे बुलवाया ये बात, तो मत बुलवाएं उसे, मत कहलवाएं उसे, वो उसके अंदर ही फिर रहने दे। वो अल्लाह को पता है कि वो उसको कितना ईमान है, लेकिन आपके कहने की वजह से अब वो ऐसी बात बोल रहा है जो उसने पहले बोली नहीं थी। अब आप के पूछने की वजह से एकदम आपने उससे गलत बात कहलवाई। तो ऐसी बातें जिनसे दूसरे का रिएक्शन ऐसा हो कि जो तौहीन वाली बात है, या अल्लाह ताला की जात या दीन के मामले में कोई ऐसी बात करेगा, तो ऐसी बातों से उसको इंस्टिगेट ना किया जाए, उसको उभारा ना जाए, उसको वहां तक ना पहुंचाया जाए कि वो ऐसी बात मुंह से निकाले, क्योंकि फिर आप उसका सबब बन रहे हैं। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने खूबसूरत बना दिया हर उम्मत के लिए उसके अमल। आप जो कोई बुत को पूज रहा है उसको वही लगता है कि यही सबसे खूबसूरत काम है और मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ। जो कोई जाके मीज़ारों पे सजदे कर रहा है उसको लगता है कि बस यहीं से मेरी हाजतें पूरी होनी है, बस यहीं से सारा कुछ मुझे मिलना है। वो इसी तरह जो जिस फिरके से है उसको भी अपना ही लगता है कि बस यही सब कुछ हक है और इसके सिवा कुछ नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं। तो मैं इला रब्बी मर्जी हूँ फयुनबी हूँ बिमा कानू या अमल, फिर अपने रब की तरफ लौटना इनका, फिर वो बता देगा इनको जो भी वो काम करते हैं। तो जिस उम्मत को भी आप ले लें, जिस ग्रोह को भी आप ले लें, आप क्रिश्चियन उठाएं, यहूदी उठाएं, मुशरिक उठाएं, जिसको भी आप देखेंगे वो अपने अपने अमल के ऊपर खुश है, उसको वही खूबसूरत दिखाई देता है, वो उसके अंदर अपने आप को समझता है कि यही हक है, चाहे उसके पास कोई भी दलील ना हो फिर भी वो उसको हक ही समझता है। तो यहीं से हमें एक बात ये भी पता चलती है कि वो लोग जो अब रिवर्टेड होते हैं, बहुत बड़ा उनका मकाम इसी वजह से है कि देखें बहुत मुश्किल होता है उन अकायद को छोड़ना, उन चीजों को जो हमेशा से इंसान ने सुनी होती है, जिस माहौल में पला बड़ा होता है, उनको छोड़ के दीने इस्लाम को इख्तियार करना ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। क्योंकि अक्सर कहा गया कि हर उम्मत के लिए अपना अपना अमल ही उसको खूबसूरत लगता है, उसको लगता है बस यही फाइनल है, बहुत अच्छे हम कर रहे हैं, हम ठीक हैं। इसलिए आप उनको इतना समझाएं भी तो कहते हैं नहीं हम ही ठीक हैं। अब क्रिश्चियंस के पास क्या दलील है? कुछ भी नहीं। और वो देखें दुनिया जहान के अंदर घूम रहे हैं अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं। अक्सम बिल्लाह ज्यादा ईमानहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्ना बिहा, उन्होंने कसमें खाई अल्लाह की पक्की कसमें कि अगर आ गई इनके पास कोई निशानी अलबत्ता वो जरूर ईमान ले आएंगे, वो जरूर मान लेंगे। ये किसकी बात हो रही है? मुशरिकी ने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमें कोई मौजजा दिखा दें, आपने अगर हमें मौजजा दिखा दिया तो हम कसमें खा के कहने लगे हम मुसलमान हो जाएंगे, हम ईमान ले आएंगे। अब ये इसके शाने नजूल में ये वाक्य आता है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सोचा, आपको तो हिर्स थी ना कि ये लोग ईमान ले, आपने सोचा शायद हो सकता है नहीं ईमान ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू की, क्योंकि उन्होंने कहा उनका मुतालबा ये था कि सफा पहाड़ को सोने का बना दे, अगर ये मौजा आ गया ना बस खुदा की कसम हम ईमान ले। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहि सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहि सलाम आके फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप कहेंगे तो हम सोने का तो बना देंगे सफा पहाड़ को, मगर इसके बाद कोई कुफर करेगा तो वो अजाब उसके ऊपर आएगा कि जो जहन्नुम में से किसी के ऊपर नहीं आया। वही जैसे हमने सूरह मायदा में पढ़ा था कि उन्होंने कहा हवारियों ने कि मायदा उतारे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उतार दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कुफर किया तो फिर उसके लिए वो सजा दूंगा जो जहन्नुम में नहीं किसी को दी। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हबीब अगर आप चाहें तो उनको सोने की पहाड़ी तो ना दी जाए, मगर अल्लाह ताला की तरफ वापसी और रहमत का दरवाजा उनके लिए खुला रहे। तो आपने फिर ये चूज किया कि मेरी उम्मत के लिए वापसी का दरवाजा और रहमत का दरवाजा खुला रहे, मुझे सफा पहाड़ी सोने की नहीं चाहिए। लेकिन जिसने मानना है ना, तो मैंने आपको बताया कि मौजे तो हर तरफ बिखरे हुए, आप बीज को जमीन में डाल रहे हैं वो निकल रहा है क्या मौजा नहीं है, सूरज निकल रहा है मौजा नहीं है, दिन और रात का निजाम चल रहा है, मौजा नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और भी मौजे दिखाए थे, शक्ल कमर का मौजा दिखाया, उन्होंने कह दिया ये जादू है, जिसने नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। कुल कह दीजिए इन्नमल आया तो इंदल्ला, निशानियां अल्लाह के पास है, यानी ये मौजे दिखाना मेरे बस में नहीं है। वमा युशइरुकुम अन्नहा इजा जाअत ला युमिनून, और क्या चीज आपको बताए कि जब आ भी जाएंगे मौजे, ला युमिनून, इन्होंने नहीं मानना, नहीं मान लाना। क्योंकि देखिए ईमान लाने के लिए मौजे की जरूरत नहीं होती है, हक जो है ना खुद अपनी पहचान करवाता है, उसके लिए कोई दलील नहीं चाहिए होती कि भाई हाँ कोई बताएगा ही तो पता चलेगा, नहीं, हक हर तरफ फैला हुआ है। वनुकल्लिबु अफ़ईदतहुम व अबसारहुम, और हम फेर देते हैं इनके दिलों को और इनकी निगाहों को, क्यों, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मरतें, क्योंकि जैसे कि इन्होंने नहीं मान के दिया पहली मर्तबा। जब इंसान पहली दफा देखता है ना, उसके पास चांस होता है कि वो मान जाए, उसको समझ आ जाती है, लेकिन जब वो इनकार करना शुरू करता है ना, तो फिर वो इनकार उसकी अना का मसला बन जाता है कि अब मानू कैसे, अब तो मैंने मान के ही नहीं देना। तो ये नहीं मतलब कि इनको मौजे तो तब दिखाए जाए ना कि इनको समझ ही नहीं आई, बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं, तो इनको मौजा नजर आ जाएगा तो समझ आ जाएगी, ये बात नहीं है। वो तो इनके सामने है, दलाइल हैं, मौजे हैं, असल में उसका आप क्या इलाज करेंगे जिसने जिद की वजह से नहीं माना। आपने देखा है कुछ लोग, आप उनको जितना मर्जी समझा दे, कुछ ही सामने होगी ना, वो इतने जिद्दी और हठधर्म होते हैं, नहीं मानते। सूरज भी उनको दिखा दें तो कहेंगे नहीं मानना। अब आप क्या कर लेंगे जो सूरज को देख के भी कहेगा नहीं सूरज नहीं, नहीं दिन नहीं है, आप क्या कहेंगे उसको, फिर उसकी अपनी आंखें अंधी है ना, इसको किसी और का तो कसूर नहीं। इसी तरह ऐसे नहीं था कि इनके सामने कोई दलाइल नहीं, कोई मौजे नहीं, मगर जब इंसान की अंदर हठधर्मी और जिद आ जाए ना, अब कई लोगों को आप समझाते नहीं जितना मर्जी कि भाई नहीं आप ये शिर्क ना करो, ये सही नहीं है, ये ऐसा, आप उनको कुरान से हदीस से दलाइल ला दो, मुसलमान होते हैं, नहीं मानना, नहीं मानना तो नहीं मानना, आप क्या करेंगे उनका। तो जैसे वो पहली दफा नहीं माने थे, तो अब अल्लाह ने इनके दिल ही फेर दिए, सख्त हो जाते हैं फिर उनके दिल, उनकी निगाहें फिर वो देखती ही नहीं है जो निगाहें इबरत होनी चाहिए। वो उनके पास, जैसे कुरान पाक में है ना कि उनके पास निगाहें हैं लेकिन उनकी लेकिन वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी है कि हाँ निगाहें अंधी नहीं होती मगर दिल होते हैं जो अंधे हो जाते हैं, वो देखते हैं हर चीज को मगर दिल अंधे हो चुके हैं, दिल में कोई बात असर ही नहीं करती। वन अगर हम फी तो या नहीं या मन, और हम छोड़ देते हैं उनको उनकी सरकशी में, वो भटकते फिरते हैं। जब अंधे हो गए, दिल सख्त हो गए, दिल ही फिर गए नहीं मानना, तो फिर अल्लाह ताला भी उनको उसी रविश में छोड़ देता है कि अब इसी में भटकते रहो। वो जैसे बात है ना, खत्म अल्लाह वाला कुलूबीम वाला समी वाला उसारी है, तो वो फिर अल्लाह ताला मुहर लगा देता है ऐसे दिलों पे, वो फिर मानने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। इसीलिए जब चीज नजर आए, हक नजर आए, उसी वक्त मान लेना चाहिए। आपने देखा होगा कुरान पाक की भी जिन अहकामात पे इंसान नहीं अमल करता, एक दफा सुना, दो दफा सुना, तीन दफा, पहली दफा में असर हुआ था, दिल में बात आई थी कि हाँ ये ठीक है, अगर इंसान ढीठ बना रहता है, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं सुनता और नहीं अमल करता, तो उसके बाद वो एक रूटीन बन जाती, फिर कभी सुने भी तो अब उसको असर ही नहीं होता, अब तो कभी कोई चीज सही भी नहीं लगती, अब तो एक मामूल की बात बन गई। फिर आप जितनी मर्जी दफा कुरान पढ़ते रहे, फिर वो ऑर्डनरी बातें लगने लगती। इसीलिए जब पहले ही पढ़े उसको अमल कर ले तो आसानी होगी। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनाए, जो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला इसको हमारे हक में हुज्जत बनाना, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाना, या अल्लाह हमारे लिए अमल को आसान फरमा देना, सिर्फ बातें ना हो, अल्लाह ताला वाकई हम अमल करके भी दिखाने वाले हों, और हमें बेहतरीन मिसाल बनाना दूसरों के लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون